आज नमाज शाम के समय शांतिवन के बेहद प्रांगण में विशाल सभा में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मुंबई तथा सब तरफ से चारों ओर से आए हुए भाई बहनों का सम्माननीय संतोष दीदी जी की ओर से, मुन्नी दीदी जी की ओर से, सभी वरिष्ठों की ओर से बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभेच्छा है। आप सभी को नए साल की भी शुभेच्छा है। आप सभी का नया साल बहुत अच्छी तरह से पुरुषार्थ में जाए, उड़ती कला का अनुभव करते रहे। आज सीजन का पहला क्लास है, सम्माननीय आत्म प्रकाश भाई जी हम सभी के समक्ष है, उनका हम करताल ध्वनि से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। अव्यक्त मास चल रहा है और यथार्थ योग करना और यथार्थ योग के आधार से उड़ती कला का या अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना, यह हम सभी का इस मास में लक्ष्य होता है। फिर भी मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता होती है और हम सभी के समक्ष सम्माननीय आत्म प्रकाश भाई जी इस विषय पर मार्गदर्शन करेंगे कि यथार्थ योग क्या है और यथार्थ योग के द्वारा योग का प्रयोग करके हम कैसे उड़ती कला को प्राप्त कर सकते हैं। भाई जी का परिचय इस तरह से है, आत्म प्रकाश भाई जी ने यह ज्ञान नागपुर से 1972 में प्राप्त किया। आप MSc गोल्ड मेडलिस्ट हैं। 1973 में आपको गोल्ड मेडल मिला हुआ है MSc में। सभी तालियां तो बजाएं। 1976 में आपने माउंट आबू मुख्यालय में अपना जीवन ईश्वरीय सेवार्थ समर्पित किया। आपने भारत के सभी प्रांतों में ईश्वरीय सेवार्थ भ्रमण किया, राजयोग पर अनेक क्लासेस कराए, रेडियो और दूरदर्शन पर आपके इंटरव्यू समय प्रति समय प्रसारित होते रहते हैं। आपकी विशेषता है राजयोग का गहन अध्ययन स्वयं करना और दूसरों को भी कराना। आपने विश्व के पांचों महाद्वीप अर्थात अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं एशिया, ऐसे पांचों द्वीपों में 100 से भी ज्यादा देशों में भ्रमण करके सेवा की। ईश्वरीय संदेश दिया तथा राजयोग की शिक्षाएं देकर अनेक आत्माओं को लाभान्वित किया। वर्तमान समय आप मधुवन, ज्ञान सरोवर तथा शांतिवन तीनों परिसरों में टोली विभाग संभालते हैं, युवा प्रभाग के वाइस चेयरमैन हैं और आज बहुत सुंदर विषय को लेकर आए हम सभी के समक्ष, यथार्थ योग और उसके प्रयोग। तो भ्राता जी से मैं नम्र निवेदन करती हूँ आप सभी के ओर से कि हमें इस विषय पर लाभान्वित करें। ओम शांति। जो माताएं भाई ऐसे दूर दूर बैठे हैं ना, यहाँ इस तरफ सामने आ जाइए। जो दूर बैठे हुए हैं आगे से स्थान पूरा कीजिए ना, आगे आ जाइए माताएं, आगे आ जाइए। भाई लोग भी आगे की कुर्सियों पर बैठ जाइए।
ओम शांति। यथार्थ योग तथा उसके प्रयोग, हम सभी मनुष्य से देवता बनने की यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, जहां स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनने के लिए 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट में मुख्य सब्जेक्ट योग का सब्जेक्ट है। जितना ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट होता जाता है उतना योगाभ्यास हमारा बढ़ता जाता है। जितनी दिव्य गुणों की धारणा हमारी होती है उतना योगाभ्यास सरल होता है, और जितनी हम सेवा करते हैं, अनेकों की दुआएं प्राप्त करते हैं, तो योगाभ्यास हमारा और आगे बढ़ता जाता है। इस यूनिवर्सिटी के जो टॉपर्स होंगे, स्कॉलर्स होंगे, वो होंगे योगी आत्माएं, क्योंकि बाबा कहते हैं योगी बच्चे मेरे निरंतर सहयोगी बच्चे कहलाते हैं, क्योंकि वो अपने श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा नई दुनिया के स्थापना के श्रेष्ठ कार्य में निरंतर सहयोगी बनते जाते हैं। इसलिए योगाभ्यास में हमें आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। वरदानों के सागर बाबा से सबसे बड़ा वरदान हमें योगी भाव का मिलता है। योगाभ्यास के मुख्य तीन उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य है परमात्म प्यार से स्वयं को भरपूर करना, परमात्म खजानों से स्वयं को मालामाल करना। दूसरा उद्देश्य है हमारे सिर पर जो 63 जन्मों का पापों का बोझ है उसको उतार देना। और तीसरा उद्देश्य है आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना। तो अभी यथार्थ योग किसको कहते हैं? यथार्थ योग अर्थात परम धाम में ज्ञान सूर्य बाबा हैं और मैं आत्मा उनके समक्ष बैठी हूं, और मेरा बुद्धि रूपी नेत्र बाबा को देख रहा है, और मेरा मन मन मना भव का मंत्र का जाप कर रहा है, इसको यथार्थ योग कहते हैं। अब परम धाम में ही बाबा को याद करना है, बाबा डायमंड हॉल में सामने बैठे हैं, फिर भी बाबा कहते हैं बाबा को परम धाम में याद करो। इसके पीछे क्या राज है? क्योंकि परम धाम ही ऐसा एक स्थान है जो होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान है, वहां किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। हर प्रकार का गहन योगाभ्यास के लिए हमें सहयोग मिलता है। सत्व प्रधान वो स्थान है, किसी भी बात का वहां प्रॉब्लम नहीं होता है। और योगाभ्यास में परमात्मा मिलन में सबसे गहन अनुभव हमें योगाभ्यास में ही होते हैं। इसलिए योगी भाव के वरदान अगर हम चाहते हैं बाबा से, तो परम धाम ये जो छठा तत्व है, जहां हमेशा सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश होता है, शांति ही शांति परम शांति होती है, वो स्थान हमारे दिव्य नेत्र के सामने सदा इमर्ज रहे, क्योंकि हमारा असली घर परम धाम है। अभी बाबा मुरली में कहते हैं, मीठे बच्चे स्वयं को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। इसमें तीन बातें हैं, स्वयं को यथार्थ रीति से आत्मा अनुभव करना, परमात्मा को यथार्थ रीति से जानना और परमात्मा से यथार्थ रीति से कनेक्शन जोड़ना। तो सबसे पहली बात है, स्वयं को यथार्थ रीति से आत्मा अनुभव करना। उसके लिए हमें विधि पूर्वक आत्मा का अभ्यास करना है। विधि पूर्वक अभ्यास करते हैं तो उसमें वृद्धि होती है और सिद्धियां भी हमें प्राप्त होती जाती हैं। विधि बड़ी सरल है, एकांत में बैठकर दिव्य नेत्र से भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा स्वयं को देखना है और उसमें हमें स्थित होना है। तो जितना हम खुद को देखते हैं उतना ही खुदा को देख सकते हैं। जितनी खुद की स्मृति रहती है उतनी ही खुदा की याद स्मृति हमें रहती है। इसलिए देखने के परसेंटेज को हम बढ़ाते चलें और उसमें स्थित होने का समय भी बढ़ाते चलें। 24 घंटे हमें झूठा भान, देह का भान रहता है, ऐसे 24 घंटे आत्मा का भान, सत्य भान रहें, तब तक हम इस अभ्यास को करते रहें। ब्रह्मा बाबा ने शुरू दिन से अंतिम दिन तक इस अभ्यास को जारी रखा, तब बाबा ने पहला नंबर लिया। इसलिए ये हमें महसूस करना है कि ये आत्मा का पाठ सबसे पहला पाठ है और सबसे अंतिम पाठ है और सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। तो जब हम आत्मा का अभ्यास करते हैं तो कभी कभी उसकी गहन अनुभूति हमें नहीं होती है। ऊपर ऊपर हम स्वयं को दिव्य सितारा देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसकी बहुत सुंदर गहन अनुभूति हम करना चाहें तो उसके लिए स्वमान में स्थित होकर आत्मा का अभ्यास बढ़ाते चलें। स्व अर्थात मैं आत्मा, मान अर्थात महान आत्मा, हम सभी महान आत्माएं इस सभा में बैठे हैं। हरेक आत्मा का करोड़ों में स्वयं भगवान ने सिलेक्शन किया है। सारे संसार को भाग्य बांटने वाले भाग्य विधाता ने हरेक बच्चे का सिलेक्शन किया है। एक बार ताली बजाओ जरा अच्छी तरह से। कितने श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है ये। तो ब्रह्मा बाबा शुरू दिन से समानधारी होकर रहे, मैं सारे संसार की प्रजा का पिता हूं, मैं नंबर वन नारायण बनने जा रहा हूँ। शुरू दिन से अंतिम दिन तक बाबा ने ये समान नेचुरल अनुभव किया, तो ऐसे हमें भी समान का एक टाइटल, कोई भी जो हमें खुशी की अनुभूति कराता है, जो हमें नशे की अनुभूति कराता है, वो टाइटल हमें आत्मा के साथ जोड़ देना है और आत्मा का अनुभव हमें बढ़ाते जाना है। तो ऐसा अनुभव करने से अति इंद्रिय सुख की अनुभूति उस अभ्यास में हमें होती है। दुनिया में जितने भी योगी इस संसार में होकर गए हैं, उन्होंने संपूर्ण योग की परिभाषा की है, पूर्णतया आत्मा में खो जाना ही संपूर्ण योग है। लेकिन बाबा यहाँ हमें सिखाते हैं, पूर्णतया परमात्मा में खो जाना ही संपूर्ण योग कहलाता है। इसलिए हमारा अपने देह से बेहद प्यार होता है, क्योंकि देह को सजाने संवारने के लिए हम कितना समय उसके पीछे लगाते हैं। तो इसलिए देह में रहते हुए इस जनवरी मास में खास विदेही स्थिति की तपस्या हमने करना है। तो ऑटोमेटिक यथार्थ योग का अभ्यास हमारा बढ़ता जाता है। तो समान के साथ हमें आत्मा का अभ्यास बढ़ाते जाना है। मैं हूँ देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। इस देह के भान को हम भुला दें, इस देह रूपी वस्त्र को उतार दें, इस देह रूपी वस्त्र को गला दें और एकदम विदेही आत्मा स्वयं को अनुभव करें। अंगद जो गायन है, ये हमारा गायन है। अंगद अर्थात अंग से न्यारा, देह भान से न्यारा रहने वाला जो होता है, रावण उसका बुद्धि रूपी पैर नहीं हिला सकता है। इसलिए बहुत गहराई से हमें इस अभ्यास को बढ़ाते जाना है। दूसरी बात, यथार्थ योगाभ्यास के लिए हमें परमात्मा को भी यथार्थ रीति से जानना जरूरी है। बाबा कहते हैं मेरे ढेर बच्चे हैं, लेकिन उन बच्चों में से बहुत थोड़े बच्चे हैं जो मुझे यथार्थ रीति से जानते हैं। मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप से मुझे याद करते हैं। ऐसा बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पीछे बहुत गहरा राज छिपा हुआ है। तो हम यथार्थ रीति से बाबा को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भी बाबा का स्वरूप कैसा है। जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे आत्मा का पिता भी ज्योति बिंदु ही है। लेकिन जो आत्मा में सात गुण होते हैं, उन सात गुणों का बाबा सिंधु है अर्थात सागर है। उस बिंदु में सात सागर समाये हुए हैं। कितनी पावरफुल वो हस्ती होगी आप सोच सकते हैं, जिसके मुट्ठी में सारा संसार है, तीनों लोगों की कारोबार उसके हाथ में है। बाबा कहते हैं मैंने जो भी पाठ हर एक आत्मा को दिया है वो पाठ वो बजा रहे हैं। तो कितनी बड़ी हस्ती है आप सोच सकते हैं। इसलिए अर्जुन को जब परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा था तो अर्जुन वर्णन कर रहे थे कि परमात्मा का जो स्वरूप है इस साकारी दुनिया के सूर्य से कई गुना हजारों गुना शक्तिशाली है, ऐसा अनुभव वो बताते हैं। तो ये सूर्य तो केवल एक दुनिया का साकारी दुनिया का सूर्य है, परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है वो तीनों लोगों के सूर्य हैं, तीनों लोगों में उनका प्रकाश निरंतर प्रवाहित रहता है। आपने सुना लोगों ने परमात्मा को सर्वव्यापी कहा है, क्यों कहा है? क्योंकि परमात्मा को ही वो क्षमता है एक ही साथ अनगिनत स्थानों पर जाने की क्षमता और अनगिनत कार्य एक ही साथ करने की क्षमता केवल परमात्मा को ही है, इसलिए लोगों ने उनको सर्वव्यापी कहा है। तो परमात्मा सर्वव्यापी तो नहीं है लेकिन सर्वशक्तिमान जरूर है, इस साकारी दुनिया के सूर्य से कई गुना शक्तिशाली है। उनका नाम है, हाँ ऐसा पिता हमें मिला है, थोड़ी अच्छी तरह से ताली बजाओ ना भाई। लोग जिसको ढूंढ रहे हैं, सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है, उसने हमें एक एक को ढूंढ कर अपनी गोदी में बिठा दिया है और खजाने लुटा रहे हैं। कितने श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है आप सोच सकते हैं। तो परमात्मा को सत्यम शिवम सुंदरम इस नाम से पुकारते हैं। सत्यम अर्थात वो सत्यता के सागर हैं, सारे संसार की आत्माओं को सत्यता की शक्ति प्रदान करते हैं और इस धरती पर सतयुग लाने की क्षमता उनके पास है, इसलिए लोगों ने कहा है सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। तो सत्यता के सागर हैं, सारे संसार की आत्माओं को सत्यता की शक्ति प्रदान करते हैं, हम सतयुग त्रेतायुग में सत्य स्वरूप में टिकते हैं, सत्य बोलते भी हैं, लेकिन द्वापर युग से वो छोड़ देते हैं, असत्य का सहारा लेते हैं। फिर भी संगम युग में बाबा हमें सत्यता की शक्ति प्रदान करते हैं। शिवम अर्थात कल्याणकारी, वो सदा के कल्याणकारी है, सबके कल्याणकारी है और बेहद के कल्याणकारी है, कल्याण के वो सागर है सागर। हमने बाबा को द्वापर युग से केवल गालियां दी, तुम कुत्ते में हो तुम गधे में हो, केवल गालियां दी, फिर भी वो रहम का सागर हम बच्चों का कल्याण करने के लिए इस धरती पर पधारे हैं। ऐसा कल्याण चाहने वाला मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है, केवल एक वो प्यारा हमारा बाबा है, कल्याण के वो सागर है। सुंदरम अर्थात वो सुंदरता के सागर है, सारे संसार की आत्माओं को सुंदर बनाने का ठेकेदार है, सभी आत्माओं पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्यूरिटीज हैं, उनको मिटाने के लिए परमात्मा ने ठेका लिया है, अर्थात वो सुंदरता के सागर है। सागर जो बहुत सुंदर चीज होती है उसको देखकर दिल नहीं भरता है, तो इसलिए जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है पूर्णिमा के और झूमता रहता है, उसके शीतल प्रकाश का आनंद लेता रहता है, ऐसे हम भी और सुंदरता के सागर ज्ञान सूर्य परमात्मा को सूरज मुखी आत्मा समझकर देखते रहे और दिल ही दिल गाते रहे, तू सूरज मैं सूरज हूँ मुखी हूँ पिया, तू सूरज मैं सूरज मुखी हूँ पिया, ना देखो तुझे तो लागे न ये जिया, किले न ये जिया, आपको एक पल भी मैं नहीं देखती हूँ तो मेरा जिया लगता नहीं है, इतने आप सुंदर हैं। एक बार विवेकानंद जी ने कहा था ये सारा संसार पागल खाना है। अरे भाई आगरे का पागल खाना तो प्रसिद्ध है, लेकिन उन्होंने कहा सारा संसार ही पागल खाना है। तो कैसे है बताओ, कोई धन के पीछे पागल है, कोई व्यक्ति के पीछे पागल है, कोई विद्या के पीछे पागल है, कोई मान प्रतिष्ठा के पीछे पागल है, कोई प्रभु के पीछे पागल है। इस संसार में सबसे महान है प्रभु के पागल प्रेमी योगी आत्माएं। क्यों सबसे महान है? क्योंकि यहाँ के जो पागल है वो तो विनाशी चीजें प्राप्त करते हैं, लेकिन योगी आत्माएं अविनाशी खजाने प्राप्त करते हैं जो हमारे साथ चलते हैं। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम बाबा को हम परम धाम रूपी पीस पैलेस में बुद्धि रूपी नेत्र से देखते रहें और उनके गुणगान करते रहें, यही यथार्थ योग है।
शांति। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मुंबई के जो भी टीचर्स बहने यहाँ बैठी हुई होगी वो कृपया उठकर कॉन्फ्रेंस हॉल में जाए, आदरणीय संतोष दीदी जी आपसे मिलेंगे। अभी ही जाना है, 6:30 बजे दीदी का मिलने का टाइम है। ओम शांति।
तो अभी हम परमात्मा के यथार्थ रीति स्वरूप को जाना, अभी उनके साथ यथार्थ कनेक्शन कैसे जोड़ना है उस पर हम स्पष्टीकरण देते हैं। कनेक्शन अर्थात शक्तियों का कलेक्शन करना, और उसके लिए मन और बुद्धि को स्पष्ट जानना जरूरी है, क्योंकि योगाभ्यास में इन दोनों शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। उसको कैसे प्रयोग में लाएं ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, तो बाबा से निरंतर कनेक्शन जोड़कर हम रख सकते हैं। मेजॉरिटी लोगों का इसमें ही कन्फ्यूजन होता है। तो बुद्धि ये आत्मा की देखने की शक्ति है, आत्मा की आंख है, दिव्य नेत्र है, जो बाबा ने हमें बर्थ डे की गिफ्ट प्रदान की है। अगर मैं आपको पूछता हूँ आपका लौकिक रहने का स्थान कहाँ है, जहाँ से आप आए हैं वो स्थान आपको तुरंत दिखाई देने लगेगा। फिर दूसरा प्रश्न पूछता हूँ कैसा आपका मकान है, स्थान है, तो आप सोच सोच कर मुझे एक एक बात बताते जाएंगे। तो देखने वाली शक्ति बुद्धि है और सोचने वाली शक्ति मन है। इसलिए आत्मा समझकर हमें परमात्मा को परम धाम में दिव्य नेत्र से देखना है। देखना माना कनेक्शन जुड़ जाना, और जितना देर तक हम बाबा को दिव्य नेत्र से देखते हैं उतना देर तक मन हमारा बाबा के गुणों के प्रति, शक्तियों के प्रति, स्वरूप के प्रति ऑटोमेटिक सोचता रहता है। अभी योगाभ्यास में एकाग्रता अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें योगाभ्यास में बैठते समय बुद्धि पर खास अटेंशन देना है। बुद्धि रूपी नेत्र बाबा से हट जाता है, कहीं भटक जाता है, तो हमें आत्मा समझकर उसको चेक करना है और उसको बाबा पर चेंज करना है। तो जितनी चेकिंग पावर, चेंजिंग पावर बढ़ती जाएगी, उतनी एकाग्रता की शक्ति हमारी बढ़ती जाती है। मन पर हमें खास ध्यान नहीं देना है, लेकिन मन को कंट्रोल करने वाली जो शक्ति है, मैनेज करने वाली जो शक्ति है बुद्धि, उस पर हमें विशेष ध्यान देना है। इसलिए इस योग को राज योग भी कहते हैं और दूसरा नाम इस योग का बुद्धि योग भी है। बुद्धि की अहम भूमिका इस योग में होती है, मेजर रोल बुद्धि का इसमें होता है। अभी बाबा से कनेक्शन हमें जोड़ते रहना है, उसके लिए दूसरी बात है, बाबा के प्रति हमारा दिल का सच्चा प्यार बढ़ता रहे, क्योंकि प्यार एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो हमारे और बाबा में जो हजारों मीलों की दूरी है, उस दूरी को समाप्त करके आमने सामने की ही नहीं लेकिन कंबाइंड स्थिति की अनुभूति हमें होती है। अभी मैं एक सीक्रेट आपको बताना चाहता हूं। मुरली में बार बार बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, किसी भी वस्तु को याद नहीं करना है। आपने सोचा होगा बाबा हर मुरली में हमारा ध्यान इस बात पर खिंचवाते हैं कि मुझे याद करो, मुझे याद करो। मैं एक दिन सोचता रहा बाबा ऐसा क्यों कहते हैं किसी व्यक्ति वैभव को याद नहीं करना। मैंने बहुत गहन चिंतन इस बात पर किया, फिर उसका जवाब मुझे मिला, एक संसार में केवल परमात्मा ही आध्यात्मिक शक्तियों के स्रोत हैं, प्रचंड स्रोत हैं और आध्यात्मिक शक्तियों के सागर हैं, और कोई भी स्रोत आध्यात्मिक शक्तियों का नहीं है, केवल एक बाबा ही बाबा है। और एक ये सिद्धांत तो हमें जानना जरूरी है कि एनर्जी जो है ये हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट के तरफ ऑटोमेटिक प्रवाहित होती है। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं आत्मा समझकर, तो ऑटोमेटिक आत्मा में शक्तियां जमा होती हैं। और जब हम किसी व्यक्ति को, वैभव को याद करते हैं, तो हमारी शक्तियां खर्च होती है, नष्ट होती हैं। इसलिए इस संसार में हम सभी बच्चों का कल्याण चाहने वाला बाबा हैं। बाबा चाहते हरेक मेरा लाल माला माल हो जाए, शक्तियों के खजाने से भरपूर हो जाए, ऐसा कल्याण बाबा हमारा चाहता है। इसलिए बार बार हमें प्रेरणा देता है मुझे याद करो, मुझे याद करो। याद का उल्टा होता है दया। जितना हम बाबा को याद करते हैं उतना शक्तियों से स्वयं को भरपूर करते हैं, अर्थात स्वयं पर दया करते हैं। अगर हम बाबा को याद नहीं करते हैं तो स्वयं पर भी दया नहीं करते हैं, तो दूसरों पर क्या करेंगे, आप सोच सकते हैं। तो इसलिए बाबा से ही दिल का सच्चा प्यार हम अनुभव करें। प्यार के सागर के बच्चे हम सभी हैं, सबके साथ प्यार से रहना जरूर है, लेकिन जो दिल का सच्चा प्यार है, आंतरिक जो प्यार है, वो एक बाबा से ही हमें शेयर करना है। किसी व्यक्ति वैभव के साथ शेयर नहीं करना है। इस बात को हमने अच्छी तरह से महसूस करना जरूरी है। अभी बाबा से ही हमें क्यों प्यार करना है, किसी व्यक्ति वैभव के साथ क्यों नहीं शेयर करना है, उसके लिए मैं 5 बातें आपके साथ शेयर करता हूं। अगर उन 5 बातों को आप अच्छी तरह से समझेंगे तो भूल कर भी किसी से प्यार शेयर नहीं करोगे, ये गारंटी है। तो पहली बात है, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। आत्माओं के प्यार में आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। द्वापर युग से हमें माया ने फुटबॉल बना दिया और 5 खिलाड़ी जो विकार रूपी खिलाड़ी हैं ऐसे हमें पीटते रहे, कहीं का नहीं रखा और इतने कड़वे अनुभव हमें कराएं जो कभी हम भूल नहीं पाते हैं। तो मनुष्य का प्यार विश्वास पात्र नहीं है, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। दूसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल है और अनकॉम्प्लिकेटेड है। परमात्मा के प्यार में कोई कंडीशन नहीं है। आत्माओं के प्यार में कितने सारी कंडीशन होती है और वो पूरी नहीं होती है तो कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं। देखो हमारी भोली भोली माताएं उस भोला नाथ का दिल जीत कर उनसे खजाने लुटा रहे हैं। ये देखो हमारी माताएं कितनी प्यारी है, भोली है। ज्ञान का कलश माताओं के ही सिर पर बाबा ने रखा है, क्योंकि बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। वो ऊपर वाले साहब को राजी करना है तो केवल हमें सच्चाई अपनानी होगी, दिल का सच्चा प्यार उनके साथ शेयर करना होगा। तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अविनाशी प्यार है, निस्वार्थ प्यार है और बेहद का प्यार है। आत्माओं का प्यार तो विनाशी है और स्वार्थ भरा है और वो सागर है, तो ये गागर है, ये भी खाली है, वो चलती रहती है, क्या प्यार करेंगे उनसे? तो वो प्यार का सागर है। निस्वार्थ प्यार करने वाला केवल बाबा एक ही संसार में है और कोई भी नहीं है। चौथी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें चढ़ती कला की अनुभूति कराता है और हमें आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज भी कराता है। ये चढ़ती कला का युग है, आत्मा को प्योर बनाने का युग है। आत्माओं के साथ जब प्यार होता है तो शरीर भी इम्प्योर तत्वों से बना हुआ है और आत्मा में भी अपवित्रता के अंश वंश है, उनसे प्यार करेंगे तो आत्मा भी इम्प्योर बनेगी। और 5वीं बात है, केवल परमात्म प्यार ही हमें होलीएस्ट हाईएस्ट स्थान पर ले जाते हैं। आत्माओं का प्यार तो हमें इस दुनिया में भटकाता रहता है, मटकाता रहता है, लटकाता रहता है, क्या प्यार करेंगे उनसे? तो इन 5 बातों को हमने रियलाइज करना है और केवल परमात्मा को ही हमें याद करना है। ये जनवरी मास में जितना चाहे आप सुंदर गहन योग के अनुभव करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि शिव बाबा ने इस मास को विशेष वरदान दिया है। ब्रह्मा बाबा इस मास में अव्यक्त हुए, इसलिए शिव बाबा ने इस मास को वरदान दिया है। जितनी ऊंची उड़ान आप आध्यात्म आकाश में उड़नी चाहते हैं उतनी ऊंची उड़ान इस मास में आप विशेष उड़ सकते हैं, उड़ती कला की अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए आप सभी 18 जनवरी मनाने के लिए भगवान के घर में पहुंचे हैं। आप वास्तव में बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। बाबा ने इतना ऊंचा भाग्य आपको दिया हुआ है, इसलिए इसका हमने पूरा लाभ लेना है। अभी जितना हो सके याद का चार्ट हमें इस मास में रखते जाना है, योगाभ्यास को बढ़ाते जाना है, क्योंकि याद का चार्ट आत्मा को स्मार्ट बनाता है, खजानों से माला माल करता है, दिव्य गुणों से सजाता है, स्मार्ट बनाता है। और सारे दिन भर में यथार्थ योग का अभ्यास करते रहना अगर है, तो बैठक का योग तो हम सवेरे शाम करते ही हैं, लेकिन सारे दिन भर में बाबा के साथ हमारे बुद्धि का कनेक्शन जुटा रहे, उसके लिए बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति को भी बढ़ाते चलें, क्योंकि ये मनुष्य का नेचर है, वो हमेशा नवीनता चाहता है। बिंदु समझकर बिंदु बाप को याद करते हैं तो थोड़े समय के बाद उसमें रुचि कम होती है, लेकिन सारे दिन भर में वो रुचि बढ़ती रहे, बरकरार रहे, उसके लिए बाबा सर्व प्राप्तियों के भंडार हैं, सर्व रसों के भंडार हैं, सर्व संबंधों के शकरीन हैं। तो सारे दिन भर में विभिन्न संबंधों की अनुभूति बाबा के साथ अगर हम करते रहेंगे तो योग की तार बाबा के साथ हमारी जुटी रहेगी और हम स्वयं को खजानों से माला माल करते जाएंगे। योग का उल्टा है गयो, योग गयो, गयो माना यहाँ हम बैठे हैं, लेकिन बुद्धि रूपी नेत्र बाबा को परम धाम में देखता है तो ये आंखों से ऐसा लगता है हम यहाँ से जाकर बाबा के पास बैठे हैं। ब्रह्मा बाबा जब कर्माती स्थिति में थे तो जब भी बाबा को झोपड़ी में कोई बच्चा मिलने के लिए जाता था तो बाबा के नैनों से ऐसा लगता था कि बाबा केवल तन से यहाँ बैठे हैं, मन से पूर्णतया परम धाम में बाबा के पास, शिव बाबा के पास बैठे हैं, ऐसा बाबा की आंखों से स्पष्ट अनुभव होता था। तो ऐसी बात में भी हमें बाबा को फॉलो करना है। हाथ काड़े दिल यारे, हाथ से कर्म करते जाना है और दिल की तार उस दिलाराम के साथ जुटी रहे, इस पर हमें विशेष अभ्यास करते जाना है, क्योंकि एक सेकंड भी बाबा को हम याद करते हैं तो अनेक पद्मों की कमाई हमें होती है। तो इसमें हमें लोभी लालची बनना है, स्वयं को खजानों से माला माल करना है और ऐसी अविनाशी कमाई करने में ही हरेक पल को सफल करते रहे। सफल मना अच्छा फल पाना, अच्छी प्राप्ति करना, अच्छे खजाने बाबा से जमा करना, उसको कहते हैं समय को सफल करना। जो महीन बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, ये जो मूल्यवान समय है उसके एक एक पल को सफल करते हैं, और जो मोटी बुद्धि वाले होते हैं ये इतना वैल्यूएबल समय है उसको साधारण रीति से बिताते हैं। इसलिए हमें समय के महत्व को जानना है और हर एक सेकंड में हमारा बुद्धि रूपी हाथ भगवान के हाथ में देना है, अर्थात सेक हैंड करना है और हर एक पल में अविनाशी खजाने प्राप्त करना है, अनेक पद्मों की कमाई करते जाना है। अभी इस योगाभ्यास से हमें योग का बल प्राप्त होता है। उस योग के बल के द्वारा हम बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग भी कर सकते हैं और उस प्रयोग के द्वारा हमारी कमाई अविनाशी दुआओं का खाता बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें बढ़ाना। तो हमें योग का प्रयोग भी करते जाना है। विशेष तीन बातों के द्वारा हम प्रयोग कर सकते हैं। परमात्मा की याद में स्थित होते हैं तो निराकार स्थिति के द्वारा वाइब्रेशन फैलाने का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है फरिश्ता स्थिति के द्वारा वाइब्रेशन फैलाने का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा है विश्व कल्याणकारी स्थिति के द्वारा बाबा से शक्तियां लेकर संसार की आत्माओं को देने का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो योग बल का प्रयोग विभिन्न बातों के लिए हम कर सकते हैं। पहली बात है किसी भी आत्मा को हिम्मत देना है, साहस देना है, या बीमारी के समय उसके दुख दर्द की पीड़ा को कम करना है तो उस समय हम योग का प्रयोग कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म रीति से उसको इमर्ज करके बाप दादा से शक्तियां लेते रहें और उस व्यक्ति को उस आत्मा को देते रहें। तो इस प्रयोग के द्वारा हम उस आत्मा को अच्छी तरह से मदद कर सकते हैं। दूसरी बात, स्वयं की सेफ्टी के लिए भी योग का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये सेफ्टी कम होती जाएगी, ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आएगी। अगर हम बाबा से सकास लेते जाएंगे और जो नुकसान पहचाने वाला व्यक्ति होगा उस पर उसको प्रवाहित करेंगे तो वो शक्तियां जब उसके पास प्रवाहित होगी वो दूर से ही भाग जाएगा, हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो स्वयं की सेफ्टी के लिए भी योग का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी बात, सेवा केंद्र की सेवा को बढ़ाने के लिए भी हम योग का प्रयोग कर सकते हैं। बाबा का जो सेवा केंद्र है, शांति का कुंड, शक्ति का कुंड, तपस्या का कुंड, पवित्रता का कुंड बनाने के लिए जो भी सेवा केंद्र पर रहते हैं और सेवा केंद्र पर जाते हैं उनको योग के प्रयोग के द्वारा सेवा केंद्र के वाइब्रेशन को चार्ज करके रखना है। सेवा केंद्र जैसे कि एक बहुत शक्तिशाली मैग्नेट की तरह है, अनेक आत्माओं रूपी सुइयों को अपने तरफ आकर्षित करता है। आपने देखा होगा पांडव भवन में जब आप जाते हैं गेट के अंदर पैर रखते ही ऐसा लगता है बाबा के शीतल गोद में हम पहुंचे हुए हैं। कितना सुखद अनुभव हमें वहां रहता होता है क्योंकि वहां का वातावरण हमेशा चार्ज रहता है, इसलिए हर आत्मा वहां के वाइब्रेशन को फील करता है। चौथी बात है, सेवा की वृद्धि के लिए भी हम योग का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी वीआईपी को, बड़ी सत्ता को, व्यक्ति को हम बाबा के पास बुलाना चाहते हैं, उसके कारण अनेक आत्माएं उनके पीछे आ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को भी हम बाबा से सकास लेकर दे सकते हैं और उनको बाबा के सेवा केंद्र पर ला सकते हैं और उनके साथ अनेक आत्माओं का भाग्य हम बना सकते हैं। ये भी सेवा योग के प्रयोग के द्वारा कर सकते हैं। और दूसरी बात है, बाबा ने कहा है इन पांच तत्वों को पावन बनाने की सेवा भी आप बच्चों को करनी है। ये सेवा करेंगे तो डायरेक्ट बाबा से हमें दुआएं मिलती रहेगी, क्योंकि हमने ही इन तत्वों को अपवित्र बनाया है, तमोप्रधान बनाया है, हमें ही इन तत्वों को पावन बनाना जरूरी है। इसके लिए इस बेहद की सेवा में जितना हम हाथ बढ़ाएंगे, बाबा के दिल की दुआएं हमें बहुत मिलती जाती हैं, और जितना चाहे हम कमाई डायरेक्ट दुआओं की कर सकते हैं। प्रकाश मणि दादी जी ने जब अव्यक्त हुए, उस समय बाबा ने एक मैसेज में भेजा था कि तत्वों की सेवा अगर आप करना चाहते हैं तो तत्वों को किसी देव या देवी के रूप में वतन में इमर्ज कर सकते हैं और बाप दादा से सकांश लेकर उनको दे सकते हैं। जैसे धरती माता है, सूर्य देवता है, तो इस रीति से उनको देवी और देवताओं के रूप में इमर्ज करके योग दान दे सकते हैं। अभी आगे चलकर प्राकृतिक आपदाएं बहुत आनी हैं, और उन प्राकृतिक आपदाओं के समय जो आत्माएं देह का त्याग करेंगे, अशांत होगी, दुखी होगी, उन आत्माओं को शांति शक्ति का दान देने की सेवा हम इस योग के प्रयोग के द्वारा कर सकते हैं। और इस सेवा में जितना हम हाथ बटाते हैं, फरिश्ता स्थिति के द्वारा या विश्व कल्याणकारी स्थिति के द्वारा हम ये योग का प्रयोग कर सकते हैं। ज्ञान सूर्य बाबा के पास परम धाम में बैठे हैं, बाबा से सकाश ले रहे हैं, और विश्व के ग्लोब पर जहां प्राकृतिक आपदा हुई है वहां आत्माओं को सकाश दे सकते हैं, और उनके दिल की दुआएं भी हमें मिलने की बहुत अच्छी तरह से प्राप्ति हम अनुभव कर सकते हैं। कहने का मतलब है ये योग के प्रयोग के द्वारा हम बेहद की कमाई कर सकते हैं। वाचा कर्मणा के द्वारा हमने बहुत सेवा की है, अभी इसके बाद चलन और चेहरे के द्वारा सेवा करनी होगी। लोग अभी ज्ञान सुनना नहीं चाहते हैं, वो हमारे जीवन में देखना चाहते हैं, तो चेहरे और चलन से सेवा करनी होगी। उसके बाद बेहद की सेवा, मनसा सेवा योग के प्रयोग के द्वारा हमें करनी होगी। सारे विश्व की, केवल महाराष्ट्र की या आंध्र की सेवा नहीं करनी है। मेरा बाप विश्व कल्याणकारी है, मैं भी उनका बच्चा मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ। सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करना ये मेरा धर्म और कर्म है। तो योग के प्रयोग के द्वारा हम ये बेहद की सेवा खूब अच्छी तरह से कर सकते हैं। सेवा और सेवा, बस ये दो ही बातें मुझे दिखाई देती हैं। तीसरी बात, मेरे को टाइम नहीं है देखने के लिए। सेवा माना बाबा की सेवा, सेवा माना बाबा की याद, इन दोनों का बैलेंस हमें रखना है। और ब्लेसिंग्स बाबा की और अनेक आत्माओं के प्राप्त करते जाना है, और बहुत दुआओं की कमाई करते जाना है। क्योंकि जब हम देह छोड़ते हैं, हमारे साथ केवल दुआओं का खजाना चलता है, जिसको लोग पुण्य कर्मों का खाता भी कहते हैं। तो हमने योग के प्रयोग के द्वारा बहुत अच्छी तरह से दुआओं का खजाना जमा करते जाना है। हमारी बड़ी दादियों ने, दादाओं ने योग के प्रयोग के द्वारा ब्रह्मा बाबा ने कितनी सेवा की और कितने खजानों से वो भरपूर होके गए, ऐसा हमें भी उनको फॉलो करना है और अपने को माला माल करना है। तो इस जनवरी मास में ब्रह्मा बाबा की फोटो कॉपी हमें करना है। हमें बहुत अच्छा स्पिरिचुअल मिरर बाबा ने दिया है, उस मिरर में हमें अपना स्थिति रूपी चेहरा देखना है और उसमें जो एरर हमें दिखाई देता है, जो कमी खामी त्रुटि रूपी एरर दिखाई देता है, उसको हमने मिटाते जाना है और बहुत अच्छी तरह से दिव्य गुणों से आत्मा को सजाना है। तो दूसरे यूनिवर्सिटी में कॉपी करना मना होता है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में कॉपी करने की खुली छुट्टी है, इसलिए ब्रह्मा बाबा को हमने बहुत अच्छी तरह से कॉपी करना है और ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ स्थिति बनाना है। एक स्लोगन सदा के लिए याद रखें, जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। पांडव भवन में जाते हैं तो शांति स्तंभ के रूप में ब्रह्मा बाबा खड़े दिखाई देते हैं, ये ब्रह्मा बाबा की श्रेष्ठ स्थिति है। हमें भी ब्रह्मा बाप समान ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है। जैसे बाप होता है वैसा बच्चा होता है, तो हमें ब्रह्मा बाप समान अचल अडोल स्थिति बनाना ही है। इस लक्ष्य को सामने रखकर योगाभ्यास को खूब अच्छी तरह से बढ़ाना है। ओम शांति। अभी हम बहुत पावरफुल योग का अभ्यास इस संध्या के समय करेंगे, बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली योग, ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति हम सभी करेंगे। खो जाना माना खजाना प्राप्त करना, तो चले हम सभी उसी मस्ती में खो जाएंगे। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य गुफा में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा विदेही स्थिति के तपस्या में मगन हूँ। सात गुणों का आत्मा रूपी तपस्वी विदेही स्थिति की तपस्या में लीन हो, मगन हो। रस निराकार ज्योति बिंदु आत्मा से दिव्यता का प्रकाश दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है उस निराकार ज्योति बिंदु आत्मा के चहुं ओर सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति हूँ सारे संसार को भाग्य बांटने वाले भाग्य विधाता मेरा बाप बन चुका है मुझे अपने भाग्य पर नाज है। निर्विकारी आत्म ज्योति इस संसार में मेरा मूल अस्तित्व एक चमकते हुए दमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में ही है। इस देह रूपी चैतन्य गुफा से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं। जहां चारों सफेद सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मस निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। प्यारे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाप दादा इस जनवरी मास में विशेष मुझे पालना दे रहे हैं। उनकी दृष्टि का मैं फरिश्ता आनंद लूट रहा हूँ। दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूँ। परम सुख की अनुभूति हो रही है। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों सुनहरी लाल हिला। दिव्य प्रकाश प्रकाश शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। ज्ञान सूर्य शिव पिता के सामने मैं आत्मा भी मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर ज्ञान सूर्य स्नान कर रही हूं। ज्ञान सूर्य शिव पिता से अथाह शक्तियां मुझ आत्मा पर पड़ रही है। शक्तियों के खजाने से भरपूर हो रही हूं। ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्ति की सकास मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रही है। मेरे माध्यम से विश्व के ग्लोब पर अनगिनत आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर शक्तियों की सकाश पड़ रही है। इस नुमा शाम के समय इसी गहन अनुभूति में विश्व कल्याण कर स्थिति में मैं आत्मा खो चुके हूं।
हरे शिव की।